العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Eighth of Muharram 1443 Hijra. According to Australia and New Zealand Moon Sighting. آٹھ محرم کی یہ مجلس 1443 ہجری کے ایام اعظم ہے. امام زمانہ اور ولایت علی کے عنوان پر گفتگو کی تو جا رہی تھی، لیکن ایک تو اسی آٹھ دن کے اندر اندر لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن، پھر کرفیو، جس کی وجہ سے ذہنی طور پر میں بھی تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا، اور ٹاپک یا سبجیکٹ تھوڑا سا میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا. تو جیسا کہ کل رات کی مجلس میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ کچھ باتیں رہ جائیں گی جو انشاءاللہ اربعین کی تاریخوں میں اگر مجھے خدمت کا موقع ملا العصر اسلامک سینٹر میلبرن کے اسی ممبر سے، تو اس کے اندر بیان کر دی جائیں گی. اور ویسے بھی اگر یہ مسئلے نہ ہوتے، لاک ڈاؤن اور کرفیو اور ٹائمنگ اور یہ سب، تب بھی اب میں اتنا آرگنائز تو رہا نہیں جتنا اپنی جوانی میں تھا. تو یہ تو تقریباً ہر سال اور ہر سلسلہ مجلس میں یہ میرے ساتھ مسئلہ پیش آتا، وقت ضائع کیے بغیر اس مختصر تمہید کے بعد، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ سات دن بلکہ آٹھ دن کی مجالس ہو گئی ہیں، اس میں موضوع کچھ ترتیب سے نظر نہیں آ رہا. تو تھوڑا ان کے حوالے سے میں نے کہا ذرا ان کو اطمینان دلا دوں کہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ پورا موضوع جس کو میں نے 12 دن میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، یہ صرف 12 سیکنڈ میں بھی بیان ہو سکتا. قرآن کریم کی ایک آیت جو میں دو دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اور ترجمہ کل نہیں ہو سکا تھا، آج ترجمہ ہوگا. یہ ایک آیت قرآن کریم کی، خالی اس کی تلاوت، پورا موضوع مکمل ہے کہ امام زمانہ اور ولایت علی، اور اس کا ترجمہ. ذرا سا بھی انسان توجہ دے تو بات اس کے لیے واضح ہو جائے گی کہ قرآن امام زمانہ اور ولایت علی کے کنیکشن کو کس طرح واضح کر رہا ہے. آیت سورہ حج کی ہے، اور وہ آیت ہے جسے میں اکثر اپنی مجلسوں میں پڑھتا ہوں جب میرا موضوع زمانے کا امام ہوتا ہے، کیونکہ میں مومنین کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر مومن، ہر مومنہ خلوص دل کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہا، لیکن اس کو پتا تو ہو کہ جب امام آئیں گے تو امام کا نظام حکومت ہوگا کیا، اور اسی اعتبار سے پھر وہ آدمی تیاری کرے. معلوم تو ہونا کہ امام آنے کے بعد کیا سسٹم اس دنیا میں نافذ کریں گے. قرآن کریم کی یہ آیت سورہ حج والی کمپلیٹ میسج بھی ہے اور امام کا سسٹم بھی بیان کر رہی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اس لیے کہہ دوں کہ تاریخیں بھی بہت زیادہ انگریزی تاریخیں میچ کر رہی ہیں، اور وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 33 سال پہلے یہی ایام اعظم کی یہی تاریخیں تھیں. آٹھ محرم نہیں تھی لیکن پہلا عشرہ تھا، کھاردر کا عشرہ میں باقی زہرہ میں پڑھ رہا تھا. عشرے کی مجلس پڑھنے گیا، مجلس کے فوراً بعد لوگوں نے خبر دی، لیکن وہ خود 50-50 تھے. اور کراچی میں جو مجلسیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک خطیب و ذاکر کو ایک کے بعد دوسری مجلس، دوسرے کے بعد تیسری مجلس، तो मेरा भी ये सिलसिला बैक टू बैक था, मुझे महफिल ज़ैनबिया कोरंगी जाना था, वहां गया, वहां से पढ़ के जब वापस आया तो कराची शहर की आखिरी मजलिस उस वक्त मैं पढ़ता था 88 पंजाबी शोहदा इमाम बारगा शोहदा कर शोहदा करबला पंजाबी कलब, और वहां जब पहुंचा तो खबर कंफर्म हो गई थी कि इस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फितना, इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा फितना, अहले बैत की दुश्मनी का एक सर से पैर तक मुकम्मल मुजस्समा जियाउल हक प्लेन क्रैश के अंदर, वो जो भी हादसात वाकयात थे उसके अंदर दुनिया से रुखसत हुआ। अब वो कितना बड़ा एक मसला था कि आज तक उसकी खराबियां हमारे सामने आ रही, वो तो परवरदिगार हमेशा साहिबान ईमान की मदद करता है, तभी ऐसे ऐसे मोजिजात अपनी आंखों के सामने हम लोग देखते हैं। इराक में सद्दाम ने यही अय्याम अज़ा और यही 40 कितनी पाबंदियां लगाई थी, आज किस शान के साथ इराक की आजादारी, जिस सऊदी अरब में उसी 1980s के जमाने में 83 में गालिबन कतीफ और ऐसा के इलाके में जुलूस निकला तो हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके पूरे जुलूस को शहीद कर दिया गया, उसी सऊदी अरब में 20-22 साल के बाद खुद हुकूमत की सिक्योरिटी के अंदर मातमी जुलूस निकलते थे, और आज कल भी उस इलाके में मजालिस भी हो रही हैं और जुलूस भी निकल रहे हैं। और कौन सऊदी अरब, जिसने कोरोना के नाम पर हज और उमरा बंद कर दिया, अय्याम अज़ा के ऊपर पाबंदी नहीं। इसी तरह हमने अफगानिस्तान में देखा कि किस अंदाज से साहिबान ईमान का कत्लेआम हुआ और मातमी जुलूसों पर पाबंदी, अब कोई भी वजह, लेकिन कल का जो जुलूस अफगानिस्तान में निकला यही तालिबान उसको पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो अब ये तो परवरदिगार का वादा है साहिबान ईमान से, तो इसमें मैं ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं जा रहा कि मेलबर्न के एतबार से कर्फ्यू शुरू हो जाता है, उससे पहले पहले हमें अपना प्रोग्राम मुकम्मल करना है, लेकिन खुलासा ये कि ये तो हमारी मुख्तसर जिंदगी, हमारी से मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे यहाँ इस वक्त 20s और 30s की एज के लोग, हमने सऊदी अरब में देखा, हमने अफगानिस्तान में देखा क्या देख रहे हैं, हमने इराक में देखा, हमने पाकिस्तान में देखा, अगरचे पाकिस्तान में अब तक किसी हुक्मरान में वो हिम्मत पैदा नहीं हो सकी जो अफगानिस्तान में मसले थे, जो इराक में मसले थे। तो खुदा की मदद 88 यही अय्याम अज़ा का पहला अशरा, और मैं मजालिस पढ़ रहा हूँ कराची में, आखिरी मजलिस में कन्फर्म हो गए कि जी वो जियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ है, वो दुनिया से रुखसत हुए हैं, क्योंकि गम के दिन थे तो मोमिनीन उसको सेलिब्रेट तो नहीं कर सके, लेकिन जो कुरान करीम में सूरह रोम की सेकेंड आयत है यौमैज़िन यफ़रहुल मोमिनूना बिनसरिल्लाह, याद करो वो दिन जब अल्लाह की मदद आ गई और मोमिनीन उसकी वजह से खुशी महसूस कर रहे हैं, यौमैज़िन यफ़रहु फरहत खुशी साहिबान ईमान के पास है बेनसरिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने उनको उनकी मदद की। तो अब ये जंग बदर की आयत है कि जब साहिबान ईमान इतने खुश थे क्योंकि जितने बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम थे, अबू जहल इसी जंग में मारा गया, वलीद इसी जंग में मारा गया, उतबा इसी जंग में मारा गया, शैबा इसी जंग में मारा गया, सारे बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम जंग बदर में मारे गए, और उसी का रिवेंज करबला में यजीद ने लिया और ओपनली कह के लिया कि आज मैं अपने बद्र व उहद का इंतकाम ले रहा हूं, क्योंकि यजीद की दादी हिंदा, हिंदा का बाप भी उसी जंग में मारा गया, हिंदा का भाई भी उसी जंग में मारा गया, हिंदा का बेटा भी उसी जंग में मारा गया, यानी यजीद का ताया। तो अब ये इतने सारे बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम, तो कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया यफ़रहो मोमिनीन खुशी मना रहे। अब अय्याम अज़ा में हम खुशी नहीं मना सकते, लेकिन दिल को एक सुकून मिला था ज़ियाउल हक के दुनिया से जाने के बाद। हमारी खुशियां फिर इख्तिताम अय्याम अज़ा पे होती हैं, जैसे जैसे इब्ने ज़ियाद जैसा जालिम कब मारा गया, आशूर के दिन मुख्तार ने जो इब्ने ज़ियाद को का खातिमा किया, मालिक अश्तर के बेटे इब्राहिम ने जाके कत्ल किया, जंग हुई भाई आशूर का दिन था, 10th ऑफ मुहर्रम 67 हिजरा, खुशी हमने कब मनाई, 9th ऑफ रबीउल अव्वल को। तो ये सारी खुशियां हमारी जो मुहर्रम में आती है वो हमको पेंडिंग में डालते हैं नवी रबीउल अव्वल के लिए, और नवी रबीउल अव्वल हमारे मौजू से मुताल्लिक है इमाम ज़माना और विलायत अली। आज 8th of Muharram है ऑस्ट्रेलिया में, यानी शब है 9th की। 2 महीने के बाद 8th of रबीउल अव्वल खत्म होगी और 9th की शब आई, पूरे 2 महीने। तो इंशाल्लाह जिंदा रहा तो वो तकरीर भी मैं करूंगा, तो यही इमाम ज़माना की इमामत और किस तरह इमाम इंतकाम लेंगे दुश्मनान सिर्फ 2 महीने बाद। और आज की मजलिस में एक बात मैं ऐसी कहने वाला हूं जिसका ताल्लुक ठीक 1 महीने पहले की मजलिस से, एग्जैक्ट 8th of Zilhijja खत्म हुई थी, शबे 9 आई थी, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की मजलिस में एक नुक्ता मैंने बयान किया था, अभी थोड़ी देर के बाद उससे कनेक्शन दे के बाद शुरू करता हूं। तो अजीब तारीख आज मेरे लिए बन गई है, ठीक 1 महीने पहले जो बात बयान की थी उसको कंप्लीट करना, ठीक 2 महीने के बाद 8, 8 और 8 तीनों तारीखें 8th हैं और तीनों मजलिसें 9th की शब को, तो वहां ज्यादा तफसील आएगी जो 2 महीने बाद की मजलिस है। लेकिन खुलासा यह है कि जियाउल हक ने जिस इस्लामी निजाम का नारा लगाया उसकी बुनियाद सूरह हज की आयत रखी, जो इमाम जमाना के लिए आयत है, जो हुकूमत इमाम जमाना बता रही, उसने कहा जी हम इस्लामी हुकूमत कायम करने जा रहे हैं, इस्लामी निजाम, और कुरान करीम इस आयत में बता रहा है कि इस्लामी निजाम कैसा होता। जैसे अहले बैत से रिलेटेड बाकी सारी आयतों को जालिम हुक्मरानों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया ना, शिमर से पूछा किसने, मुख्तार ने, कब पूछा, वही जो 8th रबीउल अव्वल के बाद शबे 9 ईद-उज़-ज़हरा की रात आती है उसमें वाकई आप सुनते हैं कि तूने इतना बड़ा जुल्म किया। और बाज लोग कहते हैं कि शिमर से नहीं खुली से पूछा गया, सब बराबर ही बराबर है, सारे के सारे दुश्मनान अहले बैत हैं और करबला के में मौजूद है और इमाम मजलूम के कातिल है। जवाब शिमर का हो जवाब खुली का हो, नाम से तो कोई इतना ताल्लुक नहीं कि तूने इतना बड़ा जुर्म किया, एक लम्हे के लिए भी तुझे एहसास नहीं हुआ तू गलती कर रहा, का एहसास कैसे हो, मैं तो कुरान के हुक्म पे अमल कर रहा हूं। कुरान पर अमल करते हुए आदमी को गिल्टी कॉन्शियस कहां होगा। सारा दरबार चकरा गया कि नवासा रसूल के गले पे खंजर चलाए और कहे मैं कुरान पे अमल कर रहा हूं। तो आपको मालूम है मजलिसों में बहुत पढ़ा जाता, कहा कुरान में कहां लिखा है, वही आया ठोक दी, अतीउल्लाह वअतीउर रसूल बोलेलम, मैंने तो उल अमर का हुक्म माना। तो अब जिस तरह से अहले बैत से रिलेटेड हर आयत को ये जालिम हुक्मरान अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करके इस्तेमाल करते हैं, ज़ियाउल हक ने इस आयत को अपनी हुकूमत के लिए एक दलील बनाया, क्योंकि तारीख यही अगस्त की तारीखें थी, यही 18-19 अगस्त की तारीखें थी, खुद ब खुद एक मैचिंग हो गई, पहले से मैं सोच के नहीं आया था। तो आयत है क्या, हमें पता है कि ये आयत ना जियाउल हक के बारे में है ना किसी और हुक्मरान के बारे में, ये आयत इमाम जमाना के बारे में, खाली तर्जमा मुकम्मल मैसेज है, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, हाँ ये लफ्ज़ बहुत अहम है, जिन लोगों को हम हुकूमत देंगे, ये बिल्कुल वाज़े फर्क कर रही कि ये आयत जियाउल हक के बारे में नहीं थी, उसको अल्लाह ने हुकूमत नहीं दी, ये आयत यज़ीद के बारे में नहीं थी। लेकिन यही तो तरीका होता है दुश्मनान अहले बैत का कि जो आयत का अहम तरीन लफ्ज होता है उसको छुपा के बाकी आयत का तर्जमा करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां भी अपने अपने आइडियाज को इस्लाम बनाने के लिए लोग यही तरीका इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल मैं शायद कल दूं, आज नहीं। आयत का तर्जमा यह है कि जिनको हम हुकूमत देंगे वो लोग जब उनको हुकूमत मिल जाएगी नमाजें कायम करेंगे, जकात का निजाम बनाएंगे, अम्र बिल मारूफ करेंगे, नहीं अनिल मुनकर करेंगे। अब बुजुर्गों को याद होगा कि जियाउल हक ने आने के बाद नमाज का सिस्टम बनाया कि हर ऑफिस में लंच के टाइम पे नमाज होगी, कई आयत पे अमल कर रहा हूं। और ये भी हर एक को पता है जो मेरी एज के लोग हैं या मुझसे थोड़ा छोटा है कि उनको नमाज पढ़ना पड़ती थी और सारी नमाजें बगैर वजू के पढ़ी जाती थी क्योंकि नमाज अल्लाह के लिए होती ही नहीं। जकात का सिस्टम बनाया जिसके लिए मैंने 2-3 दिन पहले एक मजलिस में तस्किरा किया था कि जबरदस्ती जकात काटी जाएगी, क्यों, आयत पे अमल कर रहा है। बकौल उसके, मैं नहीं कह रहा हूं, बकौल उसके, लेकिन छोड़े उसको, जहां है वो वही जगह उसके लिए मुनासिब है। हम तो कहते हैं कि इमाम जमाना का निजाम बता रहा, कुरान बता रहा है इमाम जमाना का सिस्टम क्या होगा, नमाज, जकात, नेकियों का प्रोपिगेशन, गुनाहों से रोकना, ये बहुत अहम चीज है। आखिरी दो बातें, बाकी सारी चीजें इसमें आ गई कि जब इमाम जमाना को हुकूमत मिलेगी नेकियां फैलाई जाएंगी, और खाली इमाम नहीं फैलाएंगे, हर मोमिन को अमर बिल मारूफ का ऑर्डर है कि जहां तुम देखो नेकी नहीं है, तुम्हारी भी ड्यूटी है कि आगे बढ़ के इस नेकी को फैलाओ, और जहां देखो गुनाह है इस गुनाह को नहो अनिल मुनकर, नहीं अनिल मुनकर करो। और अगर एकदम से हम उस जुमले पर आ जाए कि इमाम जमाना का जिहाद करबला का पार्ट टू, असल तो करबला है, तो करबला का भी तो यही मैसेज है, अशहदु अन्नका कद अकमत सलात व अतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहयत अनिल मुनकर, वही करबला का मैसेज जो ज़ियारत वारिसा और कई ज़ियारतों में बोला, आपने नमाज कायम की, आपने ज़कात अदा की, आपने अमर बिल मारूफ किया, आपने नहीं अनिल मुनकर किया। बहुत से लोग हैरान होते हैं कि आका हुसैन का इतना बड़ा जिहाद ज़ियारतों में, ये नमाज ज़कात क्यों आ गए, ये सूरह हज की वजह से। ये सूरह हज ने बताया कि जिस मासूम को हम हुकूमत देते हैं या जो मासूम जो जिहाद करता है उसका मकसद ये चीज है। अच्छा, अब ये तो हो गया सूरह हज में इमाम जमाना का पूरा सिस्टम आ गया। अब ये बहुत डिटेल है कि खाली ये जो हम पांच नमाजें पढ़ते हैं खाली ये नहीं आता है नमाज में, और भी चीजें हैं, लेकिन वक्त नहीं, पूरा सिस्टम। और जो मैंने ज़ियारत वारिसा का जुमला पढ़ लिया उसमें करबला का पूरा सिस्टम आ गया, और इमाम जमाना का सिस्टम हो के करबला का सिस्टम हो, ये दोनों विलायती अली का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट है। जो ऐलान पैगंबर ने गदीर खुम में किया था कि मन कुंतु मौला फहाजा अलियन मौला, ये कहा नहीं था, बैत करवाई थी, तो वो विलायत अली क्या है? ये विलायत अली वही है जिसे इमाम जमाना कायम करेंगे, वो विलायत अली वही तो है जिसके लिए हुसैन करबला में गए थे, और वो विलायत अली सूरह हज है। अगर कोई कभी आपसे पूछे कि विलायत अली को मुख्तसरन बयान करो, तो विलायत अली है नमाज का निजाम कायम करना, जकात के निजाम की अदायगी, नेकियों का पैगाम देना, बुराइयों से रोकना, यही इमाम जमाना का निजाम है, यही करबला का जिहाद है, लेकिन असल में यही विलायत अली। और अब मैं अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपको मौका मिल जाए लॉकडाउन के अंदर, तो आप जाके खुतबा गदीर पढ़ लीजिए, उसमें आपको ये चारों चीजें नजर आएंगी मौला की बैत से पहले। बैत तो एक प्रैक्टिकल अमल था ना कि आओ हाथ पे हाथ रख के बैत करो, उससे पहले जो रसूल ने खुतबा दिया है उसमें ये चारों चीजें, क्योंकि बाद लोगों को नमाज नऊज़ु बिल्लाह इतनी हकीर लगती है। मैं जरा सा फास्ट होता जा रहा हूं टाइम की वजह से, और ज़कात वगैरह इतना हकीर अमल लगता कि हैरान होकर कहते इसके लिए करबला का जिहाद, हैरान होकर कहते यह है मकसद इमाम जमाना, बल्कि हैरान होकर कहते कि अच्छा यह है गदीर का ऐलान, हमारी अकल ही कबूल नहीं करती। तो ये कलक बिल्कुल मौजू हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मुख्तसर तरी विलायत अली की तारीफ। और यहां पर एक और छोटी सी बात इसलिए बता दूं, अब ये छोटी छोटी बातों के जरिए से मैं अपने मौजू को मुकम्मल कर रहा हूं, ये बात छोटी नहीं, पूरे पूरे घंटे की मजलिस है, लेकिन टाइम नहीं है तो मैं एक एक दो दो मिनट, और ये मैं बहुत अजीब बात कह रहा हूं, शायद अगर आप पूरी तवज्जो से मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरे बारे में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पैगंबर इस्लाम की जो तबलीग है इस्लाम के लिए, उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार यह है कि पूरा दीन एक साथ एक दिन नाजिल नहीं हुआ। ये कुरान जिसके लिए कहा इन्ना अंजलना हो फी लैलतिल कद्र, शबे कद्र नाजिल हुआ, कि पूरा कुरान एक साथ आया टुकड़े टुकड़ों में आया, और कितना टाइम लगा? 23 ईयर्स। अब होता यह था कि मसलन 10 साल तक जितना इस्लाम आया, पूरा तो नहीं आया ना, कोई आदमी मर गया 10वें साल। अब जो अभी बाकी 13 साल में अहकाम आने वाले वो इससे एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो अहकाम आने से पहले ही मर गए, लेकिन दूसरे लोग एग्जेम्प्ट नहीं है जो जिंदा रहे ना बाकी 13 साल तक। बतौर मिसाल एक बात कह रहा हूं, ये एक्चुअल वाकया नहीं। इस्लाम में नमाज वाजिब हुई है मेराज की रात। मेराज कब हुई है? 12 साल बाद ऐलान सा। कोई आदमी अगर 10 साल बाद मर गया और कोई नमाज उसने नहीं पढ़ी क्योंकि नमाज वाजिब ही नहीं थी और पैगंबर ने कही जन्नती। अब 15 साल के बाद कोई आदमी मरा जब नमाज वाजिब हो चुकी थी, उसने भी नमाज नहीं पढ़ी और कहा मैं भी जन्नती हूंगा क्योंकि रसूलुल्लाह ने 5 साल पहले मेरे बाप को जन्नती कहा था, वो बेनमाजी था और जन्नती था, मैं भी तो वही काम कर रहा हूं। नहीं, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बीच में नमाज का हुक्म आ गया, अब उनका मसला अलग हो गया, तुम्हारा अलग। खाली एक मिसाल दी, तमाम वाजिबात के लिए यही मसला। बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूं, बहुत मुझे डर लग रहा कि इसके हवाले से गलतफहमी फैलाई जा सकती, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से असल बात तो ना की जाए। शुरू इस्लाम से लेकर गदीर तक, अंटिल डे ऑफ गदीर, नजात का दारो मदार थी मोहब्बत अली। चुनाचे आपको पैगंबर की कितनी हदीसें मिलेंगी जिसमें अली की मोहब्बत को कहा गया जन्नत, जन्नती का क्राइटेरिया है। नजात का दारो मदार अली की मोहब्बत, पैगंबर की हदीस है। गदीर के बाद जब विलायत आ गई है, अब ये मोहब्बत से बड़ा हुक्म आ गया। अब मोहब्बत दारो मदार ना रही नजात की, अब दारो मदार है विलायत। मैं और इस बात को वाजह कर दूं, इस्लाम में शुरू में सिर्फ दो नमाजें आई थी, फजर और मगरिब। जोर असर ईशा नहीं आई, अभी दो आई। अभी दो नमाजें पढ़ने वाला जन्नती, लेकिन जब नमाजें 5 हो गई तो अब 2 नमाजें वाला जन्नती नहीं, 5 वाला जन्नती। तो शुरू इस्लाम से विलायत अली का ऐलान खुल के नहीं आया, यानी बिल्कुल वाजिब नहीं किया गया, विलायत अली के इशारे हुए, अभी मोहब्बत का पैगाम। चुनाचे अगर कोई जंगे ओहद के मौके पर मारा जाए या जंगे खंदक के मौके पर या 8 हिजरी या 10 हिजरी और वह सिर्फ अली से मोहब्बत करता है, वो जन्नती। लेकिन जब गदीर का ऐलान आ गया तो गदीर का ऐलान सुपरसीड कर गया पुराने ऐलान को। अब मोहब्बत इज नॉट एनफ। देखिए, याद रखिए, मोहब्बत छोटी चीज, अब विलायत जरूरी। अली को टोटली अपना हुक्मरान मानना है, जो अली कहे वो करना। तो पैगंबर की हदीसें जो मोहब्बत के हवाले से आती, उसको जब पेश किया जाए तो ये ख्याल रखा जाए कि बाद में इससे बड़ा हुक्म आ गया। जैसे मैं बार बार नमाज ही की मिसाल देता हूं कि अगर पैगंबर की कोई हदीस कह दे कि 2 नमाजें पढ़ो तो ये 5 नमाजें माफ नहीं करेगी ये हदीस। वक्त नहीं है कि मैं बात को और वाजे करूं। तो विलायत अहम तरीन चीज, विलायत जो इमाम जमाना का निजाम है, जो करबला का जिहाद, टोटली अपने आप को अली के आगे सरेंडर कर देना, जो वो कहे वही तुम्हें करना। और इसमें खास तौर पर बातें तो बहुत हैं, ये भी शायद मैं ज्यादा बात को आगे बढ़ा गया, लेकिन इसमें खास तौर पे जो बात 2 दिन से आ रही है वो है पेट में जाने वाला लुकमा या निवाला, रिस्क हलाल और रिस्क बहुत बड़ी ये चीज है। जैसे हमारे एक माहौल बन गया, पता नहीं क्यों, अल्लाह आलम, जब आप कोई नमाज की बात करें, नमाज को बहुत फजीलत के साथ, तो लोग कहते हैं भाई इतनी सी चीज को इतना बढ़ा दिया आपने। सब नहीं कहते, शिया से बेहतर तो नमाज को कोई जानता ही नहीं, लेकिन कुछ नादान लोग, कुछ ना समझ लोग कहते हैं कभी रिस्क हराम हलाल और हराम। और इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, 2 दिन से ये बात हो रही है, कल की बात ये थी कि दुश्मन अहले बैत बनता ही वो आदमी है जिसके पेट में रिस्क हराम जा रहा। लेकिन अब इस वही चीज को रिपीट नहीं करना जो चीज कल रह गई थी। लेकिन इससे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाऊं, 9th ऑफ ज़िलहिज, एग्जैक्ट 1 महीने पहले, ज़िलहिज के महीने की 8वीं तारीख खत्म हुई थी, 9वीं शब लगी थी। आज मुहर्रम के महीने की 8वीं तारीख खत्म हुई है, 9वीं शब लगी। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील और जनाब अब्बास का मैंने सिमिलरिटी बताई थी, मैचिंग, और ये कह के बताई थी कि मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक मास्टरपीस मजलिस थी। खतीब आजम मरहूम मौलाना गुलाम अस्करी साहब, बानी तंजीम उल मकातिब, आल अल्लाह मकामहू की, जिसको फिर बाद में कई उलमा ने अपने अंदाज से पढ़ा कि अगर आप हालात को भी देखें, रिवायात को भी देखें, जियारतों को भी देखें, तो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील और जनाब अब्बास के हालात में बहुत सी चीजें सिमिलर नजर आती। मसलन दोनों की जियारत जो इमाम ने हमको बताई, सेम वर्डिंग, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, यहां भी है वहां भी, अल मुतीउ लिल्लाह वल रसूलिही, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की जियारत में भी है, जनाब अब्बास की जियारत में भी। पहले जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की जियारत समझाना पड़ती थी क्योंकि हमारे यहां मजलिस के बाद उनकी जियारत नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन जब से लोग कसीर तादाद में करबला जाने लगे और साल में कई कई मरतबा, तो मस्जिद कूफा में मुस्लिम इब्ने अकील की कब्र है बराबर में ही और जियारत पढ़ी जाती है, तो अल्फाज लोगों को याद से। या ये के मजलिस आजादारी का जो हमारा सिस्टम है, इसमें कंप्लीट मजलिस बाज़ औक़ात बल्कि ज्यादातर नहीं होती, कुछ कुछ चीजें होती हैं, लेकिन दो चीजें हर मजलिस में होती। नंबर एक, हर मजलिस के आखिर में ज्यारत जरूर होगी। अब कहीं तिलावत कुरान के बाद मजलिस शुरू हो जाती है, कहीं हदीस किसा के बाद, कहीं खाली सोज़ो सलाम होता है, कहीं आखिर में एक मातम होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन ज्यारत हर जगह। और जुलूस जो हमारे जुलूस निकलते हैं मातमी, उसमें भी कहीं पे सारे तबर्रुकात होते हैं, कहीं पे दो होते हैं, कहीं पे एक होता है, लेकिन और कोई कोई कुछ हो के ना हो, अलम जरूर होता। आज की मजलिस अलम अब्बास की मजलिस, तो जुलूस अगर है, हो सकता है किसी जुलूस में शहजादा अली असगर का झूला या गहवारा हो, किसी में ना हो सकता है किसी जुलूस के अंदर सुलझेना हो, किसी में ना हो सकता है किसी जुलूस में ताबूत हो, कोई बगैर ताबूत के जुलूस निकले, लेकिन अलम हर जुलूस में होगा। मजलिस हो सकता है कि किसी मजलिस में सारी चीजें हो, तिलावत, फिर हदीसे किसा, फिर सोजो सलाम, फिर जाकिर का बयान, फिर आखिर में नोहा खानी, और फिर जियारत। हो सकता है बहुत सी चीजें कट हो जाए, लेकिन जियारत जरूर होगी। अलम अब्बास की निशानी है, जिसके बगैर कोई जुलूस नहीं निकल सकता। और जियारत मुस्लिम इब्ने अकील की निशानी है कि जब इब्ने ज़ियाद के हुक्म से जल्लाद ने तलवार चलाई और मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे खड़े हैं, तो रुख किया मक्के का और आका हुसैन को सलाम भेजा और पैगाम दे दिया कि अगर तुम्हारे और हुसैन के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो तो कोई मसला नहीं है, जहां पे खड़े हो वहीं से आका को सलाम करो। अब ये मैं मैचिंग बता रहा हूं, दोनों की जियारत जो पढ़ी जाती है, जो पढ़ी जाती है सलाम अलैका, वर्डिंग सेम है, दोनों जियारतें इमाम मासूम ने बताई। जो आजादारी का सिस्टम है, तो कोई मजलिस अब्बास के आलम के बगैर नहीं, कोई जुलूस अब्बास के आलम के बगैर नहीं, कोई मजलिस मुस्लिम की सुन्नत जियारत के बगैर नहीं। और उसमें तीसरी चीज अभी अर्ज कर रहा हूं, और फिर चौथी चीज एक खास हवाले से बताऊंगा। तीसरी चीज ये दोनों वो हैं, करबला के ये दो वो शहीद हैं, दोनों वो हैं जिनके वाकये में इतनी एक सिमिलर चीज आ रही है जो किसी और शहीद के नहीं। दोनों जिहाद के दरमियान बहुत ज्यादा प्यासे हो गए, अब्बास भी बहुत प्यासे और मुस्लिम भी बहुत प्यासे, और दोनों के हाथ में पानी आ गया शहादत से पहले, मगर दोनों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। एक ने शरीयत की मोहब्बत में और एक ने हुसैन के बच्चों की मोहब्बत में। मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया भी आपको मालूम होगा, जब गिरफ्तार होकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाए गए थे, कैदी बने थे, हाथ पांव बंधे हुए, लेकिन चेहरा भी जख्मी है, होंठ भी जख्मी है, दांत भी जख्मी है, क्योंकि कूफे के मर्दों ने अगर तीर और तलवार से हमला किया तो मकान की छत पर बैठी कूफे की औरतों ने वहीं से निशाना ले लेके पत्थर मारे थे। ये मुस्लिम का जिहाद, जख्मी होंठ के साथ दरबार में आए, बहुत प्यासे से पानी मांगा, पानी आ गए, जैसे ही पानी होठों से लगाया, मुंह से निकलने वाला खून पानी में शामिल होता चला गया। मुस्लिम ने पानी पीने से इंकार किया, दोबारा पानी मांगा, दोबारा खून तो मुसलसल जारी है, तीन मरतबा पानी मांगा, तीनों मरतबा पानी में इतना खून आ गया ये पानी सुर्ख हो गया, फेंक दिया और जुमला कहा, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मुझे अपने पास प्यासा ही देखना चाहता। ये हुक्म शरीयत का ख्याल करते हुए मुस्लिम प्यासे हैं, पानी है हाथ में। भाई दुनिया में बहुत से लोग प्यासे मरते, पानी नहीं मिलता उनको, पानी है भी फिर भी नहीं पिया। और एक अब्बास फोरात पे कब्जा कर लिया, अब्बास ने, छोटा जुमला नहीं है, क्योंकि हुसैन ने जब अब्बास को जिहाद के लिए भेजा था तो मना किया था कि तुम्हें सिर्फ पानी लाने के लिए भेजा जा रहा है, इससे ज्यादा और जंग ना करना। और खाली ये कहा नहीं, एहतियातन अब्बास की तलवार अपने पास रखवा ली कि अगर तलवार हाथ में हो तो चांस होता है कि आदमी कभी जोश में आ जाए। गर्चे अब्बास के लिए चांस नहीं है, लेकिन हुसैन अपने भाई की बहादुरी दिखाना चाह रहे। खाली नैजा लेके गए, नैजे का काम है दुश्मन को अपने से दूर रखना, एक डिस्टेंस। उस नैजे से 30,000 की फौज को शिकस्त दी अब्बास ने और दरियाए फरात पे कब्जा कर लिया। पानी मश्क में भरा और उसके बाद चुल्लू में पानी लिया। ये अब्बास भी 7 मुहर्रम से प्यासे हैं, जो कल की मजलिस में मैंने आपको याद दिलाया कि 7 मुहर्रम से प्यास शुरू हुई, चुल्लू में पानी है। पानी लेके दिखाया फौज आधा को और फिर ये कह के पानी फेंक दिया कि जब तक हुसैन के बच्चे या सकीना प्यासी है मैं पानी नहीं पीऊंगा। पानी पे कब्जा किया, पानी हाथ में आ गया। 3 दिन के प्यासे भी हैं, बे इंतहा प्यास भी है, लेकिन पानी न पिया हुसैन की मोहब्बत। वो मुस्लिम है, प्यासे हैं, पानी हाथ में आ गया, पानी फेंक दिया शरीयत की मोहब्बत में। और ये अब्बास है, पानी फेंक दिया अहले बैत की मोहब्बत में। हालात की सिमिलरिटी भी देखिए। और अगरचे अगला जुमला मेरा बहुत ही भूंडा सा है, मुनासिब नहीं है इस मौके पे कहना, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं माजरत के साथ कह रहा हूं कि वो जो हमारा मौजू था रिस्क हराम और रिस्क हलाल, हम तो सिर्फ अपने अलल्ले तलल्ले और बड़े बड़े मकानात और बड़ी बड़ी गाड़ियां और BMW और फरारी और मर्सिडीज खरीदने के चक्कर में हराम की जानिब जाते हैं। और यहां प्यास की शिद्दत में दोनों ने कहा कि हम इस पानी को खुद अपने आप पे हराम कर रहे हैं। दोनों ने कहा कि हम आराम कर रहे हैं, उनका चाहने वाला, उनका मानने वाला। क्या वो ये अहद नहीं कर सकता कि हम वैसे तो नहीं है, लेकिन कम से कम इन दोनों के जिहाद को जहन में रख के ये वादा करते हैं। ये जो बात कल रात को थी, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाकया नहीं पढ़ रहा रिस्क हलाल और हराम का, लेकिन करबला की ये सीरत तो दोनों की मैचिंग। और इस मैचिंग को मिला लीजिए चौथे जुमले से। ये पिछली दफा एक महीने पहले की मजलिस में ये आखिरी दो बातें नहीं आई थी, पहली दो बातें आई थी, तो मैंने बहुत टाइम लिया था, समझा दिया था। आज सिर्फ मुख्तसर लेकिन तीसरी और चौथी बात, और वो ये कि ये दो शख्सियतें भी ऐसी, बल्कि भी का लफ्ज भी मैं गलत कह गया, ये दोनों बाबुल हवाइज। आगे अबुल हसन इस्फहानी का एक वाकया मैं अक्सर पढ़ता हूं कि अगर किसी के यहां औलाद न होती हो या जिंदा ना रहती हो, अपनी औलाद का नाम मुस्लिम रखे। जब से यह वाकया मैंने पढ़ना शुरू किया, कितने ही बच्चों के नाम मुस्लिम ये सुन सुन के लोगों ने रखे और इसका बेनिफिट देखा। और मुझे भी यह वाकया मेरे वालिद के दोस्त मौलाना मुस्लिम मेहंदी जरवली साहब ने बताया, जिनका नाम मुस्लिम इसीलिए रखा गया कि उनके बाप को आगा इस्फहानी ने, जो उनके शागिर्द थे, ये उनके बाप को ये बताया कि एक नुस्खा है अपनी औलाद बचाने का, मुस्लिम। तो खाली औलाद नहीं, लेकिन औलाद तो खास तौर पर बाबुल हवाइज हैं। इतनी हाजतें मुस्लिम के रोजे में कबूल होती, दुनिया आज भी हैरान है कि हम तो इनके मासूमीन के बारे में शक करते हैं कि सिवाय अल्लाह की हाजत कहीं नहीं है, यहां मुस्लिम जैसी शख्सियतें बहुत अजीम है, मासूम नहीं। और दूसरे अब्बास, मां तो कहने की मुझे जरूरत ही नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों ने, उलमा ने, खुतबा ने अपने अंदाजे से बाबुल हवाइज की लिस्ट को लंबे से लंबा कर दिया, क्योंकि इस अहले बैत के घराने में एक्चुअली तो हर एक बाबुल हवाइज, अहले बैत के घराने में हर एक बाबुल हवाइज है। किसको कहा जाए, या बाबुल हवाइज जिसके दरवाजे पे हर हाजत पूरी होती है, तो अहले बैत में से किसके बारे में कहा जाए कि उनके दरवाजे पे हाजत पूरी नहीं। यहां तो छोटे छोटे बच्चे भी बाबुल हवाइज हैं, हर एक बाबुल हवाइज है। लेकिन जो टेक्निकली ये कहिए एक साथ में इमाम का लकब है और एक जनाब अब्बास का लकब। अब जनाब अली असगर भी बाबुल हवाइज है, लेकिन जो मैंने कहा जियारतों में जो लफ्ज इमाम मासूम ने बताया जियारतें, तो ये दो शख्सियतें हैं बाबुल हवाइज। जनाब अब्बास बाबुल हवाइज है, इसके ऊपर तो मजीद कोई तशरी करना भी जनाब अब्बास की तौहीन है, कोई हाजत हो तुम्हारी। लेकिन जैसे जनाब मुस्लिम खास औलाद के हवाले से, और उसकी वजह भी उलमा बताते हैं कि अल्लाह का एक तरीका, तुम जो कुर्बानी अल्लाह के लिए दो, वो जो तुमने कुर्बानी दी उस हवाले से अल्लाह तुम्हारे नाम पे दुआएं कबूल करे। मुस्लिम ने हर कुर्बानी दी, लेकिन खास ये कुर्बानी दी कि शोहदाए करबला में जो बनी हाशिम गए थे, बनी हाशिम सबकी नस्लें बच गई, मुस्लिम वाहिद शहीद है जिनकी पूरी नस्ल खत्म हो गई, सारी औलादे उनके कुर्बान हो गए, कुछ करबला में कुछ कूफे में। तो अल्लाह ने कहा मुस्लिम तुमने अपनी सारी औलाद कुर्बान कर दी, नस्ल खत्म हो गई मेरी वजह से, यानी मेरे दीन पर, अब तुम्हारे नाम पे हरेक की औलाद को बचाऊंगा। तो हर हाजत पूरी होती है लेकिन खास की, और जनाब अब्बास हर हाजत पूरी होती है, बाबुल हवाइज है, बाबुल मुराद है, हर मुराद पूरी होगी, हर हाजत पूरी होगी, लेकिन खास जनाब अब्बास का सबसे बड़ा जिहाद पानी है और नहीं पी रहे प्यास से। तक प्यास की अगर किसी की हाजत, प्यास चाहे इल्म की हो, प्यास चाहे सेहत की हो, प्यास चाहे रोजी की हो, कोई भी अगर आपको प्यास है, क्योंकि अब तो हमारे यहां छोटे छोटे बच्चे तक ये बात जानते हैं कि या काशिफल करबेन वजहिल हुसैन एक शिफ कर भी बेहक अखीकल हुसैन 133 टाइम्स, ये वाली दुआ पढ़ो हर हाजत पूरी हो रही है। तो मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन जो असल मेरा मौजू चल रहा था, बाबुल हवाइज चौथी सिमिलरिटी है मुस्लिम इब्ने अकील और जनाब अब्बास। बाबुल हवाइज हर हाजत पूरी होती, और यहां पे ऐसी बात बयान करने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा वक्त चाहती, टाइम बहुत कम है, और अगर मैं वक्त के इंतजार में रहा तो शायद उससे पहले ही मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, और यह पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए दीन आसान है, आसान है, और इस्लाम उसे चाहता भी यही है कि आसान रखा जाए। हम लोगों की यहां प्रॉब्लम यह है कि जो इस्लाम ने आसान चीजें बनाई हैं उनको हम बहुत मुश्किल कर देते हैं। चले ठीक है कर दे, लेकिन उसका नतीजा ही निकलता है जो वाकई इस्लाम में मुश्किल चीजें फिर वो छोड़ देते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना थक चुके होते। मैं बहुत बड़ी बातें कहने जा रहा हूं, लेकिन बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है, और ये बात जो है ना अभी मुझे मुकम्मल करना है, लेकिन अब एकदम से मैं अपना मौजू 5 मिनट के लिए बदल रहा हूं, कोई रब्त नहीं, तो मैं 2 दिन से वादा कर रहा हूं, वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूं, ये तमीज उसी तरफ भी जा रही थी, लेकिन अब मैं घड़ी देख रहा हूं कि इतना वक्त नहीं है, तो पहले वादा पूरा कर दूं, फिर इस वादे को पूरा करने के बाद इस हवाले से जो चीजें आपको बताना थी वो कल बताऊंगा। जनाब अब्बास के अलकाब टाइटल्स तस्करा सब हजरत अब्बास का हो रहा है, ये जो बात अभी रह गई बाबुल हवाइज वाली, वो बात तो हो गई जो हर एक को पहले से मालूम, मैं इसकी तफसील में नहीं गया, वरना तो उलमा यहां रुक जाते हैं, फिर बताते हैं कितने मौजिजात पेश आए रोजे पे, कितनी हाजतें पूरी हुई, कैसे नामुमकिन काम हुए। मैं सबको वक्त का जिया समझ रहा हूं कि जो चीज अंडर स्टूड है, तयशुदा है, जिसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, वहां अपने मानने वालों में ये चीजें बताने का फिलहाल फायदा नहीं, उसको रोक रहा हूं। फिर क्या कहना चाह रहा हूं वो अभी बात आती है, उससे पहले रुक कर, जनाब अब्बास के टाइटल्स बहुत सारे और कुनियत भी बहुत मशहूर है अबुल फजल, अलकाब भी बहुत ज्यादा है, जिसमें हमारे यहां मसलन सक्का बहुत मशहूर हो गया, लेकिन एक लकब हजरत अब्बास का मैं हर साल याद दिलाता हूं, अल फकीह, इल्म फिक्ह के माहिर, इल्म फिक्ह यानी इल्म शरीयत, इल्म अहकाम दीन, इल्म वाजिब और हराम। खतीब भी बेमिसाल है, लेकिन अब चूंकि वो खुतबा जो मैंने आज से 30 साल पहले पढ़ा तो बहुत कम लोग पढ़ते थे, अब तो एक एक अय्याम में 50-50 दफा सुनने को मिलता है जो काबे की छत पे कहा तो मैं उधर नहीं जा रहा, खतीब और फकीह इल्म फिक्र के माहिर। तो अब इसकी मैं मजीद तशरी नहीं कर रहा, जनाब अब्बास की इसी सिफत को जहन में रखते हुए दो या तीन मसले जो मैं तीन हफ्ते से दो दिन से अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं, सिर्फ मसले और उसका जवाब पढ़ता हूं, ये 5 मिनट मैं अपने मजमे से अपने लिए चाह रहा हूं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह मौजू आगे बढ़ेगा। मसला है वही रिस्क हलाल और हराम वाला, लेकिन यह है कि रिस्क हराम के बहुत से पहलू हमारे जहन में नहीं आते। आयतुल्लाह सिस्तानी की तहरीर मेरे पास है, ये अरबी जबान में है, ये मुख्तलिफ सवालात हैं, मैं दो या तीन ज्यादा नहीं। सवाल नंबर एक, एक औरत है बहुत छोटा उसका बच्चा है, माँ का दूध पीता है, तो वो लेटी भी है, सो रही है या सोने जा रही है, नहीं बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा उसके पहलू में लेटा है ब्रेस्ट फीडिंग, अचानक उसको नैप ऊंग आ गई, ऊंग गई वो, यानी थोड़ी देर के लिए उसकी उसको नींद आ गई, और जब वो नींद से उठी तो उसने देखा कि नींद के आलम में वो इस तरह वो बच्चे के ऊपर चली गई थी कि बच्चे का दम घुट गया, सांस रुक गई और वो बच्चा मर गया। देखिए बिल्कुल एक एक्सीडेंटल केस है, कोई इसमें नियत मारने मरने की नहीं है। फरमाती है वो औरत, मेरे लिए हुक्म शरई क्या है? फरमाया इस मां पर जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है वाजिब है कि इस बच्चे की ब्लड मनी दे, जो उसने कोई इंटेंशन कोई नियत कोई ख्याल नहीं था बच्चे को मारने का। अलबत्ता ये जो दियत इसकी है क्योंकि बाई मिस्टेक है तो जो इस्लाम का एक हुक्म है ये आकिला देगा, अब इसको समझाऊंगा बाद में। और चूंकि इसके अमल की वजह से बच्चा मरा है तो इस पर कफारा भी वाजिब, गलती नहीं है इसकी, कफारा भी वाजिब। वो क्या है? 2 महीने के मुसलसल रोजे रखेगी। हाँ अगर बदन में इतनी ताकत नहीं, 2 महीने के रोजे मुसलसल नहीं, मुसलसल का मतलब 31 डेज तो बगैर गैप के रखना होते हैं। खैर तफसील बताऊंगा तो 5 मिनट का वादा पूरा नहीं होगा। अगर ये 2 महीने के मुसलसल रोजे रखने की ताकत नहीं तो फिर इस सूरत में 60 गरीबों को खाना खिलाएगी, मगर ये नहीं है कि 60 गरीब को खाना खिलाए तो काम चल जाए, पहले रोजे वाजिब। एक मसला, सिर्फ मैं मसले समझाता भी नहीं हूं ताकि टाइम बचाया जाए। मसला नंबर दो ये कि एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसने जानबूझकर एबॉर्शन करा दिया और अभी बच्चे में रूह नहीं आई थी, यानी शुरू के स्टेजेस की प्रेगनेंसी थी, अब वो क्या करे? जवाब, वो अपने रब से इस्तिग़फ़ार और तौबा करे और उसे इसका कफारा भी देना, और चूंकि इसने जानबूझ के वो एबॉर्शन कराया है, वो जो पहला केस था उसमें एक्सीडेंटल मौत हो गई, बच्चे मां को नींद आ गई और बच्चा दब गए, ये तो जानबूझ कर, तो कफारा भी देना, और इसका कफारा ये कि इसे 60 रोजे भी रखना है, 60 गरीबों को खाना भी खिलाना है, दोनों मिला के देना। और फिर जो उस बच्चे का वारिस है उससे इसे जो ब्लड मनी है वो उसको देना है या उसे कंप्रोमाइज करना है। सवाल नंबर 3, एक खातून एक औरत एक बच्ची पूछती है, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के कुछ अरसे बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मुझे उस वक्त औलाद नहीं चाहिए थी, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। अब ये कि बहरहाल वो प्रेगनेंसी हो गई, बहुत लंबा सवाल है, मेरे पास वक्त नहीं है। और फिर थोड़ी ब्लीडिंग वगैरह होने लगी तो ये चांस हो गया कि कहीं वो प्रेगनेंसी जो थी वो खत्म ना हो जाए, एबॉर्शन ना हो जाए। उस वक्त 7 वीक की प्रेगनेंसी थी और फिर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, यानी जाना चाहिए था इस प्रेगनेंसी को बचाने के जो तरीके हैं इमरजेंसी में जाती है हॉस्पिटल में, ये सब मैंने कुछ नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद नहीं थी प्रेगनेंसी। अब वो ऑटोमेटिक खुद इस औरत ने कोई अभी काम नहीं किया, खुद ब खुद ब्लीडिंग हो गई, लेकिन उसने बच्चे को की सेफ्टी के लिए कोई काम नहीं किया। 9 साल गुजर गए, अब मैं बहुत परेशान हूं कि मेरा ये अमल क्या। जवाब, अगर आपने उस प्रेगनेंसी को बचाने में लेजीनेस या केयरलेस होने का मुजाहरा किया, आपके केयरलेस होने की वजह से वो जो ब्लीडिंग थी उसके नतीजे में वो खत्म हो गया बच्चा, मसलन जो दवाएं इस्तेमाल करना लाजिम था प्रेगनेंसी बचाने के लिए आपने नहीं इस्तेमाल की, या अगर तबीब ने कहा कि तुम्हें आराम करना है बेड रेस्ट नहीं किया बेड रेस्ट, और इसकी वजह से वो प्रेगनेंसी खत्म हुई है, तो कुंती आसिमा से के साथ आप गुनाहगार हैं, इस्म किया आपने। लेकिन अगर आप वाकई इतनी नादिम है तो अब कोई गुनाह नहीं है, तौबा के बाद अल्लाह गुनाह माफ करता है। और अगर ये यकीन हो जाए कि आपकी लापरवाही से ही ये जो ब्लीडिंग शुरू हुई थी ये कन्वर्ट हो गई एबॉर्शन में, तो इस सूरत में दिया भी देना वाजिब है उस बच्चे का जो ब्लड मनी, और कफारा भी आप पे वाजिब है। यानी केयरलेस किसे कहते हैं कि लोग ये कहें या तबीब ये कहें इन्नकी असकतिल जनीन, तुमने इस प्रेगनेंसी को जो है वो खत्म किया है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से डॉक्टर ये कहे। बहुत जल्दी जल्दी 2-3 मसले, लेकिन ये तो जरा लंबे थे, एक एक लाइन। फरमाते हैं कि अगर शौहर और बीवी मिलकर प्रेगनेंसी खत्म करें तो कौन ब्लड मनी देगा इनमें से और किसको देंगे। जवाब दिया कि चूंकि दोनों ने मिलकर ये अमल किया, दोनों पर मिलकर, मसलन अगर $1,000 बनते हैं तो दोनों को मिला के $1,000 देना, और क्योंकि खुद उन्होंने ये एबॉर्शन करा किया है इसलिए इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको देना पड़ेगा इस बच्चे के दादा दादी नाना नानी को, और अगर वो लोग मर गए हैं तो बच्चे के चचा मामू खाला फूफी को, ये उनका हक है। ये माले हराम है अगर आपके ये अमल हुआ और आपने चचा को और खाला को और फूफी को नहीं दिया। अब इसके बाद 2 बहुत अहम मसले हैं ताकि कल बात आसानी से, या अगर कल शबे आशूर अच्छा न लगे तो आखिरी मजे, लेकिन सुन लीजिए, कभी कभार ये हो जाता है, बल्कि बहुत होता है, ये जो केस है मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा हूं। अगर किसी औरत की प्रेगनेंसी फेल हराम के नतीजे में, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, या उस पर जुल्म हुआ रैप, तो क्या उसे, और उसने फिर ये प्रेगनेंसी जो थी वो खत्म कर दी, एबॉर्शन किया, कहा कि यह अमल हराम है, यानी वो जो हुआ हराम तो हुआ इसके साथ या इसने खुद किया उस वक्त, लेकिन अब ये जो दूसरा हराम इसने किया है एबॉर्शन का, और चूंकि हराम अमल के नतीजे में रिश्ता नहीं बनता, तो अब इसकी ब्लड मनी देना पड़ेगी इमाम को, और इमाम नहीं है तो मर्जी और मुज्तहिद को। एक केस आपके नॉलेज में है कहीं जहां पे ये ब्लड मनी लड़का लड़की, गुनाह आजकल बहुत हो रहे हैं, ये पहुंचाएगा मुज्तहिद के पास। खुम्स तो लोग देते हैं, सदका तो लोग देते हैं, ज़कात तो देते हैं, और आखिरी मसला ये जरूरी है। फरमाते हैं कि एक औरत प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन यह पता चला कि यह बच्चा जो पैदा होगा डिसेबल्ड होगा, बहुत सारी इसमें खराबियां होंगी फिजिकली, या एड्स का मरीज होगा ये बच्चा, इसमें ऐसे, तो क्या अब इजाजत है। फरमाते हैं अगर इसमें रूह ना पड़ी हो, यह है मसला, और यह बच्चा अगर जिंदा पैदा हो तो बा के लिए इसकी परवरिश करना बहुत मुश्किल हो, तब इजाजत है कि एबॉर्शन किया जा सकता। अलबत्ता वो अपनी जगह इसकी ब्लड मनी फिर भी देना होगी, यह आज का बहुत प्रैक्टिकल मसला, जदीद मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद बच्चे के पैदा होने से पहले पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या ऐसे फिजिकल खराबियां हैं, ये स्पेशल चाइल्ड जिसे कहते हैं, पहले से पता, तो वहां पे इजाजत मिल रही है, शर्त यह है कि रूह पड़ने से पहले, और उसमें भी ब्लड मनी तो बहरहाल रहेगी। अलबत्ता ये इतने आसान मसाले नहीं है, इसके अंदर थोड़ी डिटेल। कल शबे आशूर तो अच्छा नहीं लगेगा। घर से शहजादा अली असगर का झूला कल निकल रहा, तो हो सकता है कि बच्चों के मसले कल ही के मजलिस में ठीक लग रहे हैं, वो हम कल के कल देखेंगे। मगर आजकल ये सवाल बहुत पूछा जाता कि मौलाना हमको पता है कि ये बच्चा जो है ना ये डिसेबल्ड है, हमें पता है कि इस बच्चे में कोई ऐसी बीमारी जैसे एड्स का सवाल तो खातून ने पूछा था, वो बाकायदा आगा सिस्तानी की वर्डिंग के साथ है, तो और भी कोई ऐसी बीमारी, क्या इस हालत में इजाजत है कि नहीं? ताकि बिल्कुल शुरू में डिसीजन ले लेना है बच्चे की रूह पढ़ने से पहले पहले, तब इजाजत मिल सकती है। लेकिन इसमें बहुत सारे मसाले हमारी अपनी गलती से, अब वो मसाइल मुकम्मल हो गए जो मुझे दो दिन से वादा था, इसकी थोड़ी तशरीह है वो छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए, अब सिर्फ इतनी सी बात, इसमें बहुत सारे मसाले हमारी अपनी गलती की वजह से पैदा होते हैं। यानी बच्चे जो डिसेबल्ड होते हैं, सब नहीं, कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ बीमारी वाले होते हैं, या बाप ने कोई कोताही की है, शरई कोताही की बात तो अभी कर ही नहीं रहा हूं या दुनियावी तौर पे, या मां ने कोई ऐसी लापरवाही की है, और या कभी अल्लाह इम्तिहान भी लेता है, तभी रिवायत यह है कि जब कभी इमाम मासूम को यह पैगाम मिलता है कि मौला मुबारक हो आपके यहां बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है, इमाम कहते हैं सिर्फ ये बता दो सही सालिम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़नी मिन्नी सबिया, फौरन शुक्र के सिजदे में गिरते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र कि कंप्लीट मुकम्मल औलाद को मुझसे पैदा किया। और इस मौके पर भी ये मुझे पता है कि जिनके घर में जिनके खानदान में ऐसे बच्चे हैं, कैसा उनके लिए पूरी जिंदगी एक इम्तिहान बन के रह जाती। यहां तो अभी बात हो रही है कि एबॉर्शन की, जब बच्चा रू भी नहीं पड़ी, बात तो ऐसे वालिदैन को मैं जानता हूं कि उस वक्त तो ख्याल नहीं किया, बच्चा पैदा हो गया, कुछ बड़ा भी हो गया तो उसको उन्होंने मार दिया, कि उनकी जिंदगी वालिदैन की जिंदगी जो है वो अजाब बन गई। मगर नहीं, ऐसे भी दो केस मेरे पास है। एक बच्चा बहुत ही मेंटली स्पेशल था, एक एड्स का। करबला में जाके आका अब्बास के रोजे पे उन्होंने दुआ मांगी है और नामुमकिन काम मुमकिन हो गया है, मेडिकल हुआ है, बच्चे ठीक हो गए। एक सिलसिला है मेरे पास वाकयात का। एक मक्के की बात थी, वो जो एक छोटी सी दीवार है ना काबे के बराबर गोल दीवार, जिसका नाम है हतीम, हमारे यहाँ नहीं, बरादरान अहले सुन्नत हतीम कहते हैं हमको, हमारे यहाँ हिजरे इस्माइल कहते हैं। वो जनाब हाजरा वहां दफन, एक माँ वहां दफन, चुनाचे वहां औलाद के लिए दुआ कबूल, पूरा पाकिस्तान जानता है आजकल। तो हमारे काफिले हज में एक दफा एक खातून आई थी अपने बेटे के साथ, बेटे का नाम हतीम था। हमने कहा ये लड़के का नाम हतीम आपने रखा, ये हतीम क्यों रखा? रिपोर्ट्स दिखाई उन्होंने, वो अमेरिकन नेशनल थी, कि सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा जो है वो जिसको एड्स हो गया था पैदा होने के बाद की बात, कोई इसका इलाज नहीं है, मैंने हतीम में आके 21 दिन रोजा रख के इसी हतीम में गुजारे, यहां से निकलती ही नहीं थी। उस वक्त की बात है जब सऊदी अरब में कोई पाबंदी नहीं थी हतीम में बैठने पर, और आज ये रिपोर्ट से आज निगेटिव, एड्स निगेटिव, ये सामने। तो ऐसे वाकयात अल्लाह कादिर मुतलक है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, हम और आप मेडिकल दिखा सकते हैं अगर हमें तरीका पता हो मेडिकल दिखाने का, और उस तरीके का नाम है बाबुल हवाइज अब्बास की चौखट पे सर झुकाई। अल्लाह ने उनको बाबुल हवाइज बनाया, हर एक की हाजत वहां पूरी होती। अरे जो बात मैं कहते कहते रुक गया उसको अब मुकम्मल कर रहा। और याद रखिए दीन आसान है, मुख्तसर जाइए हजरत अब्बास के रोजे में, कुछ ना कहिए या अबल फजल अब्बास मेरी ये हाजत है आप इसको अल्लाह के यहां पूरा करवाइए, या डायरेक्ट कहिए कि आप इसे पूरा कीजिए, अल्लाह ने इख्तियार दिया। अब मैंने देखा इस वक्त इंटरनेट पे अपनी कराची की वेबसाइट से खत्म अब्बास, हजरत अब्बास का अमल लंबे से लंबा हो रहा है, इतना दुरूद पढ़े, इतनी तस्बीह पढ़े, इतने सूरे पढ़े, फिर ये दुआ पढ़े, इसके बाद जाके इख्तिताम पे ये सब पढ़े, ये सब की जरूरत नहीं। मैं मेंबर पे बैठ के जनाब अब्बास की शहादत के मजलिस में आपको यकीन दिलाता हूं, ये दीन को मुश्किल बनाना। एक आम आदमी, नऊज़ुबिल्लाह तौहीन के लिए नहीं कह रहा हूं अगला जुमला, एक आम आदमी आगाए तकिया बेहजत नहीं है। आम आदमी है, वो मुख्तसर सिर्फ या अब्बास कह दे ये उसके लिए काफी। नादान है, ना समझ है, या ये कहिए कि वो खैरों के हाथ में खेल रहे हैं, जो इतने आसान हाजत पूरी करने के नुस्खों को मुश्किल 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 बना रहे। ये अरब दुनिया में ज्यादा खराबी, खराबी तो नहीं कहूंगा, अरब दुनिया में ज्यादा हर एक का खत्म होता। वो लंबे से लंबा थे, वो अरबी उनकी जबान है, वो इस तरह अरबी पढ़ते हैं जैसे हमारे यहां उर्दू में अगर कोई ऐसी दुआ पढ़ी जाए, सामा शिताब कर दे मेरे दिल के चैन का, जो पुरानी मुनाजात थी उसमें तवज्जो रहेगी। लेकिन अगर कहा जाए कि आप अरबी में सूरह यासीन ही 11 मरतबा पढ़िए, कितनी आपकी तवज्जो रहेगी। हाँ, अगर इस्लाम कहे कि यही तरीका है तो अलग बात, इसको आसान रखिए। एक इल्म है इल्म इरफान, उसके नाम पे पाकिस्तान में इतना धोखा दिया जा रहा है, बाकी बातें कल। मैं एक बात, एक एक जुमले में बात समेटता हूं। बाबुल हवाइज, कोई जरूरत नहीं आपको किसी लंबे चौड़े अमल करने, खाली अब्बास का नाम काफी। ये जुमला भी कितना सिंपल है, या काशफल कर बेन वजहिल हुसैन इक्शिव कर भी बेहक यखी कल हुसैन, उर्दू में पढ़िए। क्या है, अपने भाई हुसैन की परेशानी दूर करने वाले, आपको हुसैन का वास्ता मेरी परेशानी दूर कर, बस यही सबसे मुकम्मल अमल है। बड़े बड़े पूरी पूरी रात, पूरा पूरा हफ्ता, तमाम सूरों और तमाम आयतों के साथ, उनकी मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं लेकिन वो अमल का हिस्सा नहीं है। खुद से आप पूरा कुरान पढ़िए तब भी कम है। सुय्यरत बिल जिबाल कुत्तियत बिल अर्ज़ कुल्लिमा बिल मौता, सूरह रात की आयत है ना, ये कुरान में इतनी ताकत है कि पहाड़ टुकड़े हो जाए, जमीन को चला सकते हो, तुम मुर्दों से बातें कर सकते हो, पूरा कुरान पढ़ डाली। लेकिन बात हो रही है जिसको जो मुसीबत सजा है, जिसके दिल को लगी। मुख्तसर तो मैंने कहा पूरे पूरे महीने अमल करने वाला अब्बास के जरिए को थाम के अमल करता है, उसके बाद नहीं, बहुत से केसेस है दुआ कबूल नहीं। और एक बद्दू अरब, बल्कि एक बद्दू अरब औरत, जाहिल मुतलक, कुछ नहीं जानती है, आदाब और तमीज भी उसके पास नहीं है, वो आके जरिए पकड़ के कहती है अब्बास मैं तो तुझसे ये लेके जाऊंगी और उसको मिल जाता। कुछ नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई कुरानी सूरा नहीं, कोई आयत नहीं, सिर्फ इतना कहती है कि मैं लेके जाऊंगी और अब्बास उसको देते हैं, क्योंकि नीयत का खुलूस देखा जाता है। मुख्तसर तरीन आप बात को रखिए। हाँ, कोई ज्यादा उसका दिल चाहता है वो पढ़े, लेकिन उसको अमल का हिस्सा ना बनाइए। बात तो ऐसे अमल है कि मैं अपनी बात करूं, मैं उसको देख के घबरा जाता हूं कि भाई इतना लंबा अमल तो मुझसे नहीं हो सकेगा। दीन आसान है, खासतौर पर दुआओं की हद तक, और ऐसी दुआएं जो फौरी जरूरत की दुआएं। सिर्फ एक जुमला कह दे आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता, या आपको आपकी भतीजी सकीना का वास्ता, देखिएगा बगैर किसी लंबे चौड़े अमल के आपकी दुआ कबूल हो रही। क्योंकि अब्बास कायनात की उस अजीम हस्ती का नाम, जिसको बहुत ही मुख्तसर में एक जुमले में बयान करता हूं, तो ये कहता हूं फजाइल अब्बास पे पूरा अशरा पढ़ा जाए तब भी हक जर्रा बराबर 0.0001% हक भी अदा नहीं होगा। और बहुत ही मुख्तसर कहा जाए तो एक जुमला काफी, और वो ये है कि जो खानदान सारी कायनात का मुश्किल कुशा, ये खानदान अहले बैत है ना, ये तमाम इंसानों का मुश्किल कुशा, ये जानवरों का मुश्किल कुशा, ये फरिश्तों का मुश्किल कुशा, ये अंबिया का मुश्किल कुशा, ये सारी कायनात का मुश्किल कुशा, अब्बास इसके मुश्किल कुशा। दुनिया में किसी को कोई मुसीबत और परेशानी पेश आती है वो अहले बैत को पुकारता, और अहले बैत जब किसी मुसीबत में होते तो वो अब्बास को पुकारते। कायनात की तारीख में अब्बास इस एतबार से बहुत अजीब शख्सियत, एक जानिब इल्म ऐसा है कि फकीह भी कहलाए, खतीब ऐसे हैं कि हुसैन ने जब उस मजमे को खिताब करना चाहा हाजियों के, जिसमें वो लोग हाजियों के कपड़े पहनकर आए थे जो हुसैन को शहीद करने आए हैं, तो अब्बास का इंतखाब किया, खुद भी खिताब नहीं किया। खतीब ऐसे आलिम ऐसे लेकिन बहादुर ऐसे कि 72 की छोटी सी फौज को 30,000 के लश्कर से जंग करवाई, फजर से लेके मगरिब तक ये जंग होती रही जो आधे घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, और वो भी उस वक्त के जब अब्बास को खुद जंग करने की इजाजत नहीं मिली। अहले बैत को जब कभी परेशानियां, मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं, हर एक अब्बास को पुकारता, आप मैदान करबला में देख लीजिए, सैदानियों के दिल का सहारा अब्बास है, नन्हे नन्हे बच्चों को ढारस है अब्बास से। औरत की बात छोड़िए, खुद आका हुसैन कह रहे कि जब तक मेरा अब्बास जिंदा है मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान। एक रिवायत जो मरहूम जैदी साहब अक्सर पढ़ते थे, मैं पढ़ू, शबे आशूर कल रात को आने वाली है, शबे आशूर के मसाइब भी कल रात को पढ़े जाएंगे। शबे आशूर, मैंने कहा कि पहले मर्दों का इम्तिहान लिया गया, आधी रात के करीब औरतों का इम्तिहान लिया गया, फिर सब अपने अपने खेमों में गए। फजर के करीब अब्बास अलमदार अपने खेमे में तलवार को सैकल कर रहे, कल के जिहाद की तैयारी। अल्लाह आपको बार बार खेमा गा ले गया है, जैसे ही आप एंटर होते हैं पहला ही खेमा अब्बास का, पहरेदार है पूरे घराने के जो मर्दों का एंट्रेंस है, पहला ही खेमा अब्बास का है, वहां बैठे, बिल्कुल दरमियान में आका हुसैन और जनाब ज़ैनब का खेमा है। अब्बास तलवार को सैकल कर रहे हैं, एक मरतबा देखा सानिय जहरा ज़ैनब कुबरा मेरे खेमे में दाखिल हो रही, तब के अब्बास खड़े हो गए, हाथों को जोड़ा, शहजादी आपने क्यों जहमत की, इस गुलाम को अपने पास बुला लिया होता। अब्बास को यही कहना चाहिए और ज़ैनब का जवाब भी वही होना चाहिए, अब्बास बहन भाई के पास आई है, इसमें ताज्जुब की बात क्या है, तो मेरे छोटे भाई हो और अब्बास मैं इसलिए आई हूं। यह आशूर की रात खत्म हो रही, फजर करीब आ रही, इंशाल्लाह हालात अगर ऐसे ही रहे जैसे आजकल है तो अजान अली अकबर की मजलिस अल असर इस्लामिक सेंटर में भी होगी, तो अजान अली अकबर का वक्त करीब आ रहा। ये सारी बीबियां रात भर की इबादत और रात भर अपनी औलाद तैयार करने के बाद अभी मेरे पास आई, और आने के बाद कहा कि शहजादी आप मुश्किल कुशा आलम की मुश्किल कुशा बेटी हैं, हमारी हर परेशानी आपके जरिए दूर होती है, हमें आज के दिन और किसी बात की फिक्र परवाह नहीं है, बस अगर हमें परेशानी है तो अपनी चादर की परेशानी है, अपने हिजाब की परेशानी है, शहजादी हमारी चादरें महफूज रहेंगी। अब्बास मैंने उन बीबियों से ना हाँ कहा ना कहा, मैं इसलिए तेरे पास आई हूं कि मेरा जवाब वो है जो तू कहेगा। और अब्बास ने हाथ जोड़े, अब्बास के जवाब की एहतियात भी देखिएगा, ज़ैनब के जवाब की एहतियात भी देखिएगा। अब्बास ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के सिर्फ एक जुमला कहा, शहजादी जब तक आपका गुलाम अब्बास जिंदा है किसी बीबी की चादर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी बीबी की चादर पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, जब तक आपका अब्बास जिंदा है। और ज़ैनब को यकीन है कि इस कायनात में तो कोई नहीं है जो मेरे अब्बास को मार सके। अभी ज़ैनब को भी क्या पता था कि अब्बास को तो तलवार चलाने ही ना दी जाएगी, ज़ैनब को यकीन है मेरा अब्बास को मार ही नहीं सकता। चुनांचे यकीन के साथ वापस गई और अपने खेमे में जाके कहा कि बीबियों घबराना नहीं, अली की बेटी तुझसे वादा करती है तुम सबकी चादरें कल सलामत हैं। लेकिन ये वादा कब किया, फजर के वक्त किया, और असर का वक्त करीब आ रहा है, ज़ैनब अपना वादा वापिस ले रही, ज़ैनब अपना वादा वापस ले रही है। कब, सुबह से जिहाद शुरू हुआ और हर बार अब्बास तड़प के आका के पास आते हैं, लेकिन खुसूसन जब बनी हाशिम के जवानों की बारी आई, बच्चों की बारी आई, जरा सोचिए अब्बास के दिल की कैफियत, जब बनी हाशिम के बच्चे जा रहे हैं, अब्बास तड़प के आते हैं आका के पास, मौला पहले मुझे जाने दीजिए, मौला मुझसे अपनी गोद के पालों के लाशें नहीं उठाई जाते, मौला जो मेरे शागिर्द हैं जिन्हें तलवार चलाना सिखाई है, और उनका लाशा, मोहम्मद का लाशा, कासिम का लाशा, अकबर का लाशा, जरा सोचिए अब्बास के दिल पे क्या कयामत गुजर रही, मैं जिंदा हूँ तलवार चला सकता हूँ और न मोहम्मद के लाशें मुझे उठाना पड़ रहे हैं, कासिम के बदन के टुकड़े मुझे देखना पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के का मौला ये सब मेरे शागिर्द, ये सब मेरी गोद के पाले, इनके लाशें नहीं उठाई जा रहे, मौला पहले मुझे जाने दीजिए। और हुसैन एक ही जवाब देते, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, अभी अलम आने वाला है, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें कैसे जाने दूं। ऐसा जवाब होता है कि अब्बास क्या कहें, सर झुका के सुन लेते हैं। लेकिन आखिर वो वक्त आ गया कि अब्बास तड़प के गए, मौला अब तो मुझे जाने दीजिए। हुसैन ने कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब अब्बास खामोश ना रहे, अजीब जुमला कहा, लेकिन मौला वो लश्कर रहा कहां जिसका मैं अलमदार था। मेरे सारे प्यासे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे, अब्बास अकेला रह गया। तो हुसैन का दूसरा जुमला था, लेकिन अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी भी हो, मैं तुम्हें कैसे मख्तल में जाने दूं। जुमला मुकम्मल कर लूं, मैंने आधा जुमला पढ़ा था, मसाइब के आगाज में जुमला मुकम्मल हो रहा। मैंने जुमला पढ़ा था जो सारी कायनात का मुश्किल कुशा घराना है, अब्बास उसके मुश्किल कुशा, यही कहा था ना। अब सुनिए अगला जुमला, क्या सारी कायनात के मुश्किल कुशा अहले बैत है, अब्बास अहले बैत के मुश्किल कुशा, तो कोई अब्बास का भी मुश्किल कुशा, कोई अब्बास का भी मुश्किल कुशा है। जब अब्बास मुसीबत में आते हैं, हुसैन ने मना किया, अब्बास खेमे में आए। इधर अब्बास खेमे में आए, नन्नी सकीना ने आके चचा का दामन थाम लिया। चचा ये छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते और आने के बाद कहते हैं, तुम मुश्किल कुशा की पोती हो, शेरे खुदा की पोती हो, हमें बहुत प्यास लग रही है, कहीं से पानी नहीं ला सकती। मैंने बच्चों से वादा कर लिया, चचा ये वादा मैंने तेरे भरोसे पर किया है। चचा पानी ले आ। अब्बास एक मर्तबा खुशी से खिल उठे, कहा, सकीना बेटी तेरा चचा जाने को तैयार है, लेकिन आका इजाजत नहीं दे रहे, मैं ये सुनना था। सकीना ने कहा, चचा ये कौन सी मुश्किल बात है, बाबा ने मेरी कोई बात आज तक नहीं टाली है, आइए मैं आपकी सिफारिश करती हूँ, अहले बैत के मुश्किल कुशा अब्बास हैं और अब्बास के मुश्किल कुशा सकीना है। सकीना लेके चली, हुसैन के खेमे में आई और एक बार हुसैन ने यह मंजर देखा, हुसैन इमामे वक्त हैं, समझ गए कि सकीना क्यों आ रही हैं। कहा, अब्बास तुम इसको सिफारिशी बना के लाए, अब मैं कुछ नहीं कहता, सकीना आ गई, अब मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन शायद शायद सकीना से कहा, सकीना बेटी अभी तो चचा की सिफारिश कर रही है, बाद में ये चचा बहुत याद आएगा, जब रुखसार पे तमाचे लग रहे होंगे, जब कमर पे कोड़े पड़ रहे होंगे, सकीना बेटी यही चचा याद आएगा। मगर अब्बास के लिए तो आका का जुमला काफी था, तड़प के घोड़े पे सवार और मख्तल चलना चाहते हैं। दिल में ख्याल पैदा हुआ, कहीं आका वापस ना बुला ले, और आका ने बुला लिया, आका ने बुला लिया, अब्बास कहां जा रहे हो। अब्बास ने कहा, मौला आप ही ने इजाजत दी है। कहा, वो मैंने इजाजत दी है, लेकिन तुम करबला के, ये मेरा जुमला, वो मुजाहिद हो जो खाली मेरी इजाजत से नहीं जाओगे, जाओ और जाके पहले जैनब से भी इजाजत लो। जरा सोचिए, 55 बरस की बूढ़ी बहन है, 34 साल का कड़ियल जवान भाई है, जिस बहन ने औलाद की तरह भाई को पाला, वो 34 साल का भाई सामने खड़ा होकर हाथ जोड़े सर झुकाए और कहे कि शहजादी अब मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। जैनब ने सर से पैर तक अब्बास को देखा। हमारे यहाँ एक जुमला मशहूर है, यह दूसरा जुमला भी बढ़ा लीजिए, अली अकबर शबीह रसूल थे, बीबियों को रसूल खुदा की जियारत का दिल चाहता था, अकबर को देखती थी, और अब्बास शबीह हैदर कर्रार हैं, जब बीबियों को अली मुर्तजा की जियारत की तमन्ना होती थी, अब्बास के चेहरे की जियारत करती थी। जैनब ने कहा, अब्बास मैं तुम्हें देख देख के बाबा को याद करती हूँ, अब तुम भी जा रहे हो, लेकिन जाओ, नाना के दीन के लिए जैनब ये कुर्बानी देने को भी तैयार है। बस जाते जाते इतना सुन लो, एक दिन बाबा के पास बैठी थी, बाबा की निगाह मेरे इशारों पर पड़ी, मेरा बाबा रोने लगा। मैंने कहा, बाबा बेटियों को देखकर बाप की जिंदगी बढ़ जाती है, आप रो रहे हैं। कहा, जैनब इन्हीं शानों में एक दिन रस्सियां बंधी होंगी, सर पे चादर नहीं होगी, कैदी बना के लाई जाओगी, वादा कर बद्दुआ ना करोगी। मैंने वादा भी कर लिया। कभी कभार दिल में एक वसवसा आता था, जिस बहन का एक भाई होता है कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, मेरे तो 18 भाई हैं, और अब्बास जैसा भाई मेरी चादर पे कौन हाथ डालेगा। लेकिन अब्बास अब जो तुम मख्तल की जानिब चले, तो जैनब को पता चल गया, हाय वो वक्त आ गया कि मेरी चादर छीन जाने वाली है, तुम नहीं जा रहे, जैनब के पास वो मेरी रस्सी बंधने वाली है, लेकिन जाओ, दिल तो बहुत चाहता था कि अब्बास का जिहाद पढ़ूं, लेकिन एक जुमला काफी। अब्बास ज़ैनब से इजाजत लेके चले, घोड़े पे सवार हुए और फरात की जानिब चले। फिज़ा दरे खेमा पर जाके खड़ी हो गई और एक मर्तबा पर्दा हटा के देख रही है और पुकारी, शहजादी ज़ैनब जरा जल्दी से आई, यहाँ खेमा कहाँ है और यहाँ फरात, शहजादी जरा जल्दी से आई। ज़ैनब तड़प के आई, फिज़ा अम्मा फिज़ा क्या बात है? कहा अम्मा, कहा शहजादी ज़ैनब, जब मैं आपको अपने मौला के जिहाद सुनाया करती थी ना कि अली ने खंदक में ऐसे जिहाद किया, खैबर में ऐसा जिहाद किया, तो आप कहती थी ना अम्मा, काश मैं उस वक्त खुद खैबर में होती, बाबा के जिहाद को देखती। उस वक्त तो आप ना देख सकी, आके देखिए, ये अब्बास फरात की जानिब नहीं जा रहे, ये हैदर कर्रार खैबर का किला फतह कर रहे हैं। इसी शान से मेरा मौला जिहाद करता था। और अब्बास दरिया फरात पे पहुंच गए और अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया, वो रिवायत आपको मैं सुना चुका हूँ। अब अब्बास वापिस आए, अब अब्बास वापिस आए, अब्बास आ रहे हैं। उमर साद ने आवाज दी, अरे मेरी फौज वालों, खबरदार ये पानी खेमे में ना पहुंचने पाए वरना गजब हो जाएगा, अरे घेरे में लेके अब्बास को मार दो। चारों तरफ से फौज ने गलबा किया, 30,000 का लश्कर है। जरा एक मंजर अपने दिमाग में लेके आइए, सारे बच्चे नन्ही सकीना के साथ दरे खेमा पे खड़ी हैं, सबके हाथ में पानी के खाली कूजे हैं, अब्बास तो नजर नहीं आ रहे, 30,000 का लश्कर है ना, एक बार सबकी निगाह अलम पर पड़ी है। अभी जो अलम आएगा ना, अभी आप अलम की जियारत करेंगे ना, वो अलम की जियारत सारे बच्चे कर रहे। अलम गया फुरात तक पहुंचा, बच्चों का नजर आ रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं। अलम वापिस आया। सकीना ने आवाज दी, बच्चों जल्दी से पानी के कूजे थाम लो, अलम आ रहा है, यानी मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। एक मर्तबा अलम आगे बढ़ा, लेकिन ये अलम जरा डगमगाया, ये अलम जरा हिला, ये अलम दाईं तरफ झुकने लगा, ऐसा लगा अलम गिरने वाला है। सकीना घबरा गई, मेरा चचा खैरियत से रहे। अलम संभल गया। अलम और आगे बढ़ा। एक मर्तबा अलम बाईं तरफ झुका, अरे ऐसा लगा अलम गिरने वाला है, लेकिन नहीं, गिरते ही अलम संभल गया। एक मर्तबा ये अलम और आगे बढ़ा, लेकिन अब जो आगे बढ़ा तो ये अलम जमीन करबला पे गिर के ठंडा हुआ। अब्बास की आवाज आई, आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। खेमे में हुसैन बैठे हैं, कमर को पकड़ लिया और कहा, अल आन इन कसरा ज़हरी, अब्बास तुम नहीं मरे, हुसैन की कमर टूट गई। और दरे खेमा सकीना ने पानी का कूजा हाथ से फेंका, जमीन करबला पे अपने आप को गिरा दिया। चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, चचा वापिस आ जा, अरे सकीना अब्बास को मांग रही है। और उधर हुसैन अब्बास के सरहाने पहुंचे, बात बहुत अब नहीं पढ़ा जा रहा, मुख्तसर बात, अब्बास के सरहाने पहुंचे, जमीने करबला पे बैठे, अब्बास का सर अपनी गोद में लिया। अब्बास कोई वसीयत है? कहा मौला सिर्फ एक वसीयत है, जब पैदा हुआ था तो पहली जियारत आपकी की थी, दिल चाहता है दुनिया से जाते जाते आखिरी जियारत भी आपकी कर लूं, लेकिन क्या किया जाए, एक आंख में तीर लग चुका है, दूसरी आंख पे खून जम गया है। मौला अगर मेरे हाथ सलामत होते तो ये खून खुद साफ कर देता, मौला जरा सा ये खून साफ कर दीजिए, आखिरी जियारत आपकी करना है। हुसैन रोते हुए झुके, अब आके दामन से अब्बास की आंख से खून पोछा, अब्बास ने आंख खोली, आखिरी जियारत हुसैन की। बाज उलमा यहाँ पे एक जुमला कहते हैं, अब्बास भाई भाई को देख रहा है, लेकिन अब्बास ने जिंदगी में कभी हुसैन को भाई तो नहीं कहा ना, आका कहा। हुसैन ने कहा, अब्बास तेरी वसीयत मैंने पूरी कर दी, क्या तू एक वसीयत मेरी पूरी करेगा? तड़प के अब्बास ने कहा, मौला हुक्म दीजिए। कहा, जब से सुना है तेरी जबान से भाई का लफ्ज कभी नहीं सुना, हमेशा आका का लफ्ज सुना है, एक बार तो मुझे भी भाई कह दे। अब्बास ने हुसैन को देखा, भाई कहा, अब्बास दुनिया से रुखसत हुए, हुसैन ने अलम संभाला, अलम लिया, खेमा कहा के सहन में आए, ज़ैनब को बुलाया, ये अलम ज़ैनब के हवाले किया, कहा ज़ैनब अलम संभालो और अब मुझे रुखसत करने की तैयारी करो। ज़ैनब ने कहा, भैया अभी ठहर जा, अभी बहन आती है, अलम लेकर अपने اپنے خیمے میں گئی، ایک بار آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے فروا، ذرا یہاں تو آنا. ساری بیویاں دوڑ کے آئیں. بی بی شہزادی خیریت تو ہے؟ کہا کل رات کو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادر سلامت ہے، میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں. وعدہ واپس لے رہی کیوں؟ جس کے سہارے وعدہ کیا تھا. ہائے میرا باس مارا گیا، ارے علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا.
اے علمدار وفا، بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا، بازو کٹانے والے، مٹ گئے خود